लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे ईश राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जाने। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 145वें भजन के 8 से लेकर 13 तक के पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत पास्का महापर्व से पहले का प्रसारण हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से समाप्त किया था। 21 पदों वाले 145वें भजन में सार्वजनिक आराधना अर्चना समारोह के लिए सुझाव निहित है। इन अवसरों पर ईश्वर का गुणगान किस प्रकार किया जाए, इस पर भजनकार जोर देता है। ईश्वर महान, वैभवशाली, प्रतापी, न्यायप्रिय और महिमा से परिपूर्ण है तथा पृथ्वी की प्रत्येक हरकत हमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रेरित करती है। इसी पर प्रभु सेवकों का ध्यान आकर्षित कराया गया है। श्रोताओं, 145वें भजन के ये शब्द कि समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, इसी बात का स्मरण दिलाते हैं कि सुबह के समय चिड़ियों का चहकना, मधुमक्खियों का गुनगुनाना और उदित सूर्य की किरणों की धूली में गायों, बैलों, बकरियों और भेड़ों का उत्साहपूर्वक दौड़ना, ये सब मिलकर प्रभु की महिमा का बखान करते और घोषित करते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य से ही सृष्टि, मनुष्य और ईश राज्य की रचना संभव हुई। ये हमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के गुणगान हेतु तो आमंत्रित करते हैं। इसीलिए 145वें भजन के 13वें पद में भजनकार कहता है, तेरे राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। ईश राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वह अनादि है, वह अनंत है। श्रोताओ, बाहरी शक्तियों से घिरे दुनिया के राज्यों का अंत अवश्यम भावी है, क्योंकि ये लोभ लालच की आधारशिला पर खड़े हैं, जबकि ईश्वर के राज्य और उनके सामर्थ्य की शक्ति है दया, करुणा, विनम्रता और प्रेम, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा।
त्रिएक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिएक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिएक ईश्वर
आगे 145वें भजन के 14 से लेकर 19 तक के पदों में प्रभु भक्तों को आश्वासन दिया गया है कि जो कोई भी प्रभु से विनती करेगा उसकी विनती सुनी जाएगी, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। भजनकार कहता है, प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर भले हैं, वे सदैव अपने भक्तों की सुधि लेते हैं। श्रोताओ, कृपालु और दयालु, यही है ईश्वर की शाही शैली, उनके प्रताप और उनके वैभव का रहस्य। ईश्वर की भलाई, उनकी दया और उनकी कृपा को मनुष्य उनके महान कार्यों में देख सकता है, क्योंकि भजनकार के अनुसार प्रभु ईश्वर निर्बल को संभालते और झुके हुए को सीधा करते हैं। सब ईश्वर की ओर देखते और उनसे आशा करते हैं कि प्रभु समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेंगे। प्रभु खुले हाथों देते और हर प्राणी को तृप्त करते हैं। और भजन के 18वें और 19वें पदों में प्रभु हाथ बढ़ाकर उनको तृप्त करते हैं जो उनसे विनती करते हैं। वे उन सबके निकट हैं जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वे उनका मनोरथ पूरा करते और उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करते हैं। अस्तु, ईश्वर उन सब के समीप हैं जो दिल से दुआ करते हैं, उन्हें हर पल सहायता मिलती रहती है। 145वें भजन के 16वें पद में भजनकार कहता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। श्रोताओ, ईश्वर मनुष्यों के सृष्टिकर्ता और उनके त्राणकर्ता हैं। वे हर परिस्थिति में मनुष्य की सुधि लेते हैं, तो उस व्यक्ति की सुधि क्यों न लेंगे जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। यहाँ भजनकार हमसे आग्रह करता है कि ईश्वर पर हम भरोसा रखें तथा उन्हीं में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करें, क्योंकि जो ईश्वर चिड़ियों को दाना देते, क्या वे बच्चों को भूखा रहने देंगे? वे उनका रुदन सुनेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। भजन के 19वें पद में भजनकार कहता है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। आगे 145वें भजन के अंतिम दो पदों में भजनकार कहता है, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। श्रोताओ, ईश्वर उन लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं जिनमें शालीनता है और जो उनमें विश्वास करते हैं। विश्वासियों की अखंडता को प्रभु ईश्वर बनाए रखते हैं, जबकि दुष्ट विनाश की ओर जाता है। अधर्मियों का विनाश अवश्यम भावी है। स्तोत्र ग्रंथ की भजन संख्या 91 में भी प्रभु भक्तों को इसी प्रकार का आश्वासन मिला है। लिखा है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रम में रहते और प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित हो, कहो कि प्रभु ही मेरी ढाल है, क्योंकि वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों तले शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। तुमने सर्वोच्च प्रभु को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा।
त्रिय एक ईश्वर तो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिय एक ईश्वर तो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिय एक ईश्वर पवित्र आत्मा है ये सच। तू ही पिता है, तू ही पुत्र, तू ही पवित्र आत्मा है ये सच। करते प्रशंसा स्तुति गान गाते सकल चराचर।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व बैंक दल एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2021 की सभा के प्रतिभागियों को एक पत्र भेजा और आशा व्यक्त की है कि सभा में विचार विमर्श द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न संकटों के बीच पुनर्निर्माण करने, अधिक समावेशी होने एवं सतत समाधान हेतु सुधार के प्रतिमान को सहयोग दिया जा सकेगा। पत्र को संत पापा ने समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठ परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टक्सन के माध्यम से भेजा। संत पापा ने कहा, पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण हमारा विश्व कई गंभीर एवं सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक एवं राजनीतिक संकटों का सामना कर रहा है। मेरी आशा है कि विचार विमर्श सुधार का एक प्रतिमान प्रदान करेगा जो वास्तविक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए नए, अधिक समावेशी एवं स्थायी समाधान तैयार करने में सक्षम होगा और व्यक्तियों एवं समुदायों को उनकी गहरी आकांक्षाओं एवं सार्वभौमिक सामान्य अच्छाई को प्राप्त करने में सहायक होगा। संत पापा ने कहा कि सभी स्त्री एवं पुरुष समान बनाए गए हैं, जबकि मानव परिवार में बहुत सारे भाई बहन, खासकर समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोग आर्थिक जगत से बहिष्कृत हैं। हालांकि महामारी ने हमें याद दिलाई है कि कोई भी अकेला नहीं बच सकता। यदि हमें इस परिस्थिति से बेहतर, अधिक मानवीय एवं एकात्मक रूप से बाहर निकलना है तो एक नया एवं रचनात्मक समाज का निर्माण करना होगा जो राजनीतिक एवं आर्थिक सहभागिता में गरीबों की आवाज के प्रति सचेत एवं संवेदनशील हो तथा आम भविष्य के निर्माण में उन्हें भी शामिल करे। संबंधों का निर्माण तभी किया जा सकता है जब मुलाकात की संस्कृति को विकसित किया जाए जिसमें सभी की आवाज सुनी जाए। पोप फ्रांसिस ने संकट से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर देते हुए कहा कि कई देश जब व्यक्तिगत रूप से सुधार योजना बना रहे हैं, एक वैश्विक योजना की अति आवश्यकता है जो नए या मौजूदा संस्थानों को पुनर्जीवित कर सके, खासकर सभी लोगों के अभिन्न मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया नेटवर्क बनाने में मदद कर सके। इसका अर्थ है कि गरीब और कम विकसित देशों को निर्माण करने में प्रभावी मदद करना एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहुंच की सुविधा देना। संत पापा ने पारिस्थितिक ऋण की भी याद दिलाई। हम वास्तव में मानव प्रेरित पारिस्थितिक क्षरण और जैव विविधता की हानि से प्रभावित लोगों एवं देशों के साथ साथ प्रकृति के प्रति भी ऋणी हैं। संत पापा ने सभी सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वे सभी लोगों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए एक साथ कार्य करें, खासकर सबसे कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों पर ध्यान देते हुए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रार्थना में शुभकामनाएं अर्पित की तथा उन पर ईश्वर की प्रज्ञा की आशीष, भली सलाह, शक्ति और शांति की कामना की। पोप फ्रांसिस ने एक फोटो एवं 1950 के दशक के रिकॉर्ड में अपने नाम और नंबर को प्राप्त करने के बाद स्पानिक आर्थिक साप्ताहिक दल अल्फा एवं ओमेगा को एक पत्र भेजा। रिकॉर्ड बतलाता है कि एक युवा के रूप में पोप फ्रांसिस उन विश्वासियों में से एक थे जिन्होंने अर्जेंटीना के बोनस आयर्स में पौत्र संस्कार के महागीर जगह की लगातार भेंट की थी। फोटो में जॉर्ज बेरकोलियो यानी संत पापा का नाम 84 पृष्ठ संख्या के 195 नंबर पर है। उसी पृष्ठ पर उनके भाई ओस्कर बेरकोलियो का नाम भी अंकित है। फ्रांचेस्को इल गुइलारे दिदियो एक नई किताब का नाम है जिसके लेखक कार्डिनल रनियरो कंतला मेसा हैं और संत पापा फ्रांसिस ने इसकी भूमिका लिखी है। किताब में संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं को प्रोत्साहन दिया है कि वे ईश्वर के बुलावे का प्रत्युत्तर दें जो हमारे लिए हमेशा प्यासे रहते हैं। संत पापा ने भूमिका में लिखा है कि किताब युवाओं के लिए लिखा गया है। उन्होंने गौर किया है कि सुसमाचार में येसु के उन शब्दों को शायद कई लोगों ने पढ़ा और सवाल किया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। संत पापा ने कहा है कि ये प्रभावशाली शब्द हैं जिनमें महान प्रतिज्ञाएं हैं, किंतु हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि मैं प्रभु से मांगता हूँ तो क्या वे सचमुच मेरी अर्जी सुनेंगे? यदि मैं ढूंढता हूँ तो क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? यदि मैं खटखटाता हूँ तो क्या मेरे लिए द्वार खुल जाएगा? क्या कभी कभी ये वादे झूठे नहीं लगते? क्या इन शब्दों पर विश्वास किया जा सकता है? ये सवाल मन में बाइबल के दूसरे शब्दों की याद दिलाते हैं। संत पापा कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पा जाओगे, क्योंकि तुम मुझे सारे हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें अपने आप को पाने दूंगा। संत पापा लिखते हैं कि ईश्वर निश्चय ही अपने आप को प्राप्त करने देते हैं, किंतु सिर्फ उन लोगों को जो उन्हें सारे हृदय से ढूंढते हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा है कि अपनी पूरी शक्ति से उन्हें खोजें, प्रार्थना करें, मांगें, उनका आह्वान करें, पुकारें और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे हमारे लिए अपने आप को प्रकट करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें और प्राप्त करें। मोजम्बिक के विस्थापित लोगों के लिए भोजन, आवास, वस्त्र एवं मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राथमिक एवं अति आवश्यक चीजें हैं जो काबो देलगादो के उत्तरी प्रांत से भाग रहे हैं, जहां 2017 से ही तनाव जारी है। प्रांत में संघर्ष के कारण करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 7 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। पेम्बा के धर्म प्रांतीय कारितास के निदेशक मानवेल नोता ने एक अपील जारी कर कहा है कि कैथोलिक कलीसिया द्वारा प्रदान की जाने वाली मदद मुस्लिम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बतलाया, हमारा मानव सामाजिक सहायता कार्य बहुत अधिक सम्मानित है। कारितास विस्थापित लोगों को न केवल चीज वस्तुएं प्रदान कर रही है बल्कि अपने दुखों के बारे बातचीत करने का अवसर भी दे रही है, जो उन्हें पीड़ा से बाहर निकलने एवं नया जीवन शुरू करने का मौका दे रहा है। किंतु सबसे बड़ी चुनौती है नए घर का निर्माण, जिसके लिए आवश्यक साधनों की कमी है। मानवेल नोटा ने बतलाया है कि इस समय विस्थापित लोग छोटी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जहां रहने और खेती करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।